नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रैनोमी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और चीन के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में शांति और स्थिरता के महत्व पर बल दिया है। चीन के साथ भारत के संबंधों पर आज राज्यसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच चर्चा तनाव कम करने और प्रभावी सीमा प्रबंधन पर केंद्रित होगी। उन्होंने सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि साजो सामान संबंधी चुनौतियों और कोविड की स्थिति के बावजूद भारत तेजी से और प्रभावी ढंग से जवाबी तैनाती करने में सक्षम था। उन्होंने कहा कि भारत और चीन ने सीमा मुद्दे को हल करने के लिए कई दशकों से बातचीत की है। सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सरकार की प्रतिबद्धताओं पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि लद्दाख में सड़कों, हवाई क्षेत्रों और अन्य रसद सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इससे सशस्त्र बलों की क्षमताओं में वृद्धि हुई है। लोकसभा में आज रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को विचार और पारित करने के लिए लाया गया। विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां प्रदान करना और निकाय की कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता को बढ़ाना है। विधेयक को आगे बढ़ाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य रेलवे क्षेत्र में और अधिक दक्षता लाना है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले रेलवे का बजट करीब 29,000 करोड़ रुपए था और अब 2,52,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक ने पोदी बारबी के अवसर पर राज्यवासियों, खासतौर पर आदि समुदाय के रामो, पाइलिबो और बोकर को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये पर्व समाज में खुशहाली, अच्छी फसल और समृद्धि लाएगा। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि त्यौहार हमारी विरासत के महत्वपूर्ण वाहक के रूप में काम करते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित और बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से चली आ रही ये कालातीत परंपराएं हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और विरासत का प्रमाण है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उड़ान योजना के तहत एलायंस एयर की नई उड़ान क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगी और पर्यटन तथा जीरो वैली के विकास को बढ़ावा देगी। एलायंस एयर आज से गुवाहाटी से जीरो के लिए प्रति सप्ताह 2 उड़ानें संचालित कर रही हैं। घरेलू वाहक सोमवार और बुधवार को उड़ानें संचालित करेगा। राज्य के कृषि एवं बागवानी मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने कल नई दिल्ली में राज्य की कृषि और बागवानी नीति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अर्नस्ट एंड यंग एलएलपी के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के सहयोग से आयोजित बैठक में राज्य के अनूठी चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए नीति को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अपने संबोधन में श्री वांगसू ने किसानों और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में क्षमता निर्माण, ब्रांडिंग, विपणन और किसानों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए हॉर्टीप्रेन्योर कार्यक्रम शुरू करने का भी ध्यान केंद्रित किया गया। परिवहन एवं आरडी मंत्री ओजिंग तासिंग ने कल पासीघाट के गिद्ध नोतको में 24वें अखिल अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परिवहन स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए श्री तासिंग ने राज्य के परिवहन सेवाओं में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की, जो लोगों को और वस्तुओं तथा अन्य सेवाओं के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती हैं और राज्य तथा पूरे देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देती है। कार्यक्रम के दौरान जिला सड़क सुरक्षा समिति ने सभी AAPPTF सदस्यों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता और यातायात सुरक्षा पर प्रदर्शन आयोजित किया। ईटानगर के महिला पुलिस स्टेशन में स्थित आने होम ने आज महिलाओं और बच्चों के लिए ओरिएंटेशन मॉड्यूल शुरू किया। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन का अंत विषय पर आधारित ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान और राजधानी पुलिस के सहयोग से संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह में स्कूली बच्चों, पंचायती राज प्रतिनिधियों और पापुम पारे क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। ये पहल बाल विवाह और बाल शोषण जैसे सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है। समावेशी और सशक्तिकरण की भावना के साथ दीपक नावंग लिविंग होम ने कल ईटानगर में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।